क्या था, रूह वही रूह नया। गाथा में आप सुन रहे हैं एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी के साथ एक खास बातचीत।
नमस्कार, हमारे प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो कई बार आग से गुजरना पड़ता है। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो झुलस कर रह जाते हैं, लेकिन हमारी आज की मेहमान एक ऐसी इंसान है जो इस आग से गुजरी और तप कर कुंदन बन गई। हमें बेहद खुशी है कि आज हमारी मेहमान है लक्ष्मी। लक्ष्मी, आपका एक परिचय तो ये है कि आप एसिड सर्वाइवर हैं, बट दैट इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन टू हु यू आर। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपकी ज़िंदगी से इंस्पायर्ड हम एक कोट से शुरू करना चाहते हैं। ये मलाला यूसुफ़ज़ई का कोट है
जी।
आई रेज अप माई वॉइस नॉट सो दैट आई कैन शाउट, बट सो दैट दोज हु आर विदाउट अ वॉइस कैन बी हर्ड। इज़न्ट इट इंस्पायरिंग?
Exactly.
But what is it that inspires you?
हम हमेशा इंस्पायर होने के लिए बाहर जाते हैं
जी।
हम हमेशा टीवी देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। ये बुरी बात नहीं है कि आपको इंस्पायर होना ही है, हिम्मत चाहिए आपको। तो क्यों हम अपनी फैमिली से भागते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं हमेशा? हम क्यों उनकी जर्नी नहीं सुनना चाहते? इसलिए क्योंकि वो हमारी फैमिली है, हम उनसे कभी भी बात कर सकते हैं। हम चाहे तो वो हमारे अपने, हम चाहे तो वो हमारे अपने नहीं। तो कहीं ना कहीं मुझे जो इंस्पायर करते हैं वो मेरे पापा के कुछ वर्ड्स।
अच्छा।
मेरे पापा मम्मी ने अपनी लाइफ में भी, मैं अपनी मम्मी को सबसे बड़ी जो सर्वाइवर है वो मानती हूँ, अपने से ज़्यादा। मेरे ऊपर तो एक अटैक हुआ है, उनके ऊपर बचपन से अटैक ही होते आए हैं।
किस तरह से?
जैसे वो जब 1.5 साल की थी तो उनकी मम्मी की डेथ हो गई। वो 3 भाई बहन थे। फिर उसके बाद वो थोड़ी बड़ी हुई तो उनके पापा की डेथ हो गई। वो 3 भाई बहन जो समाज में अकेले थे, और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। मम्मी सबसे छोटी थी। ऐसी लगातार हर दिन कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रही। और कुछ समय के बाद एक ऐसा वक्त आया कि परिवार वालों ने भी साथ देना छोड़ दिया, और वो बहुत परेशान होने लगे। फिर उसके बाद मेरी मासी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरे मामा जो बड़े थे, मासी थी उसके बाद मम्मी थी, तो मामा जब बड़े हुए तो उनको लगता था, कोलकाता से हैं मेरी मम्मी, तो उनको लगता था कि दिल्ली में बहुत नौकरी मिलती है और पैसा कमाने का एक सबसे अच्छा जरिया दिल्ली ही है, तो मैं वहाँ जाके कमाऊँगा और अपनी बहन को ठीक से रख पाऊँगा। उसके बाद उनका वो सपना था। और उसके बाद जब वो दिल्ली आने लगे, उनके ही दोस्तों ने उनके साथ धोखा कर दिया। मतलब उन्हीं से पैसे लेके, और उसके बाद उन्हीं को, मतलब टीटी को कह दिया कि हम इसको नहीं जानते हैं। ये धोखा हुआ। मम्मी वहाँ कोलकाता में अकेली थी, रिश्तेदारों के बीच में। मम्मी को बहुत टॉर्चर किया जाता था, बहुत मारपीट किया जाता था, बहुत छोटी थी। और उसके बाद एजुकेशन तो मतलब हम भूल ही जाएं कि उस टाइम पे वो एजुकेशन पा सकती, कि मतलब ऐसे लोगों के बीच में रह रही थी। उसके बाद किस मतलब ट्रेन से मामा को फेंक दिया गया। कुछ टाइम के बाद हॉस्पिटल में पता चला, पहले तो बोला लवारिस है वो, उसके बाद फिर उनको जब वो मिले तो कुछ टाइम वो बीमार रहे और उनकी भी डेथ हो गई। फिर उसके बाद मम्मी किसी भी तरीके से, एक उनकी बुआ जी थी, उनको दिल्ली लेके आई। और मेरे पापा जॉब करते थे, मेरे पापा को कुक थे, पर उससे पहले वो फौज में और कुछ चीज़ें वो कर रहे थे। और उन्होंने सारी जॉब छोड़ दी, मतलब गवर्नमेंट जॉब काफ़ी उनके पास थी, उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि मुझे क्या करना है। उनके अंदर भी वही था कि उनको जो करना है वो करना चाहते थे। उसके बाद फिर उन्होंने वहीं से, जब वो आई मम्मी, तब मम्मी 13 साल की थी। और उसके बाद वो बुआ जी मेरे पापा को भी जानती थी,
तो उन्होंने शादी कराई दोनों
उन्होंने
की?
उन दोनों की, पापा लखनऊ से थे, मम्मी कोलकाता से थी। पापा को उनकी जर्नी उन्होंने बताई, उसके बाद उन दोनों की शादी करा दी। 14 की मम्मी हुई तो मैं हो गई।
अच्छा।
ऐसा हुआ, काफ़ी छोटी एज में उनकी शादी हो गई। फिर कुछ समय के बाद काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी चल रही थी, पापा आउट ऑफ कंट्री चले गए और 3-4 साल पापा ने बाहर देश में बिताया। वापस आए कुछ समय के बाद मुझ पे अटैक हो गया, और अटैक होने के बाद वो फर्स्ट अटैक, मतलब वो एक जो जर्नी, बड़ी नॉर्मल सी एक छोटी सी फैमिली थी, मम्मी पापा मैं और मेरा छोटा भाई, और उसके बाद ये जर्नी चलती रही। मेरे मेरे ऊपर अटैक हुआ एक तरीके से, वो मुझ पे नहीं, वो मेरे पूरे परिवार पे अटैक हो गया। तब मैं 15 साल की थी।
जब अटैक की बात करते हैं, इस बात को 10-11 साल हो गए,
12 साल
2005
में हुआ था,
और आज भी उस अटैक का एक एक मोमेंट जो है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसे ही बर्फ में जैसे जमा होता है वैसा है, यू रिमेम्बर एवरी मोमेंट।
बिल्कुल, मैं कभी नहीं भूल सकती, कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि उस अटैक ने सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को बर्बाद किया है। उसके बाद जो हुआ, मेरे भाई को टीवी हो गई, जब वो छोटा था तो सारा ध्यान पापा मम्मी का मुझ पे था, और अचानक से ऐसा हुआ कि उस पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था। फिर वो धीरे धीरे एक ऐसी संगत में पढ़ने लगा कि उसकी लाइफ एकदम अलग होने लगी, और उसको लगता था, वो कहता तो नहीं था पर वो देखता तो था, वो मन ही मन कुछ तो सोचता होगा। उसको फिर उसको भूख लगना बंद हो गया, उसने धीरे धीरे करके सब कुछ छोड़ना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उसको टीवी हो गया, फिर उसके बाद पापा ने जब डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, तो अचानक से पापा को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई।
एंड वो 46 के थे, उतने भी नहीं थे शायद।
हाँ, कम एज के थे। और उसके बाद फिर कुछ समय के बाद भाई की भी डेथ हो गई। तो मतलब वो अटैक, मेरे ऊपर तो वो अटैक था, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे बड़ा अटैक था वो एसिड अटैक था। और उसके बाद एक माँ के सामने एक बेटी का इस तरीके से जलना, उसके बाद उनके ही आंखों के सामने उनके पति की मौत होना, उनके बेटे की मौत होना, वो सबसे बड़ी मतलब उनके लिए, वो आज भी मतलब इस तरीके से जी रही हैं। जब वो रोती हैं, वो रो भी नहीं पाती हैं मेरे आगे, वो डरती हैं कि मेरा अब एक ही बच्चा रह गया है। तो मुझे वो चीज़ें ऐसा लगता है कि सही मायनों में ना वो सबसे बड़ी सर्वाइवर हैं। जब मैं अपना हिम्मत, जब मेरी हिम्मत टूटती है तो वो मुझे सहारा देती हैं हर दिन हर पल, क्योंकि हर दिन एक चैलेंज आपका वेट करता है। तो मेरे लिए मेरी माँ बहुत बड़ी मतलब एक हिम्मत है। मेरे पापा मेरे लिए बहुत, जब मेरे पापा की डेथ हुई उससे पहले जब अटैक हुआ मेरे ऊपर, और उस टाइम पे मैं 2.5 महीने के बाद जब अपने घर आई तो मेरे घर से सारे शीशे और फ्रेम सब हटा दिए गए थे। तो मैंने कहा कि मुझे बड़ा मन था कि मैं अपना चेहरा देखूँ कि मतलब मैं तो और सुंदर, क्योंकि मैं बड़ा फिल्मी दुनिया में सोच रही थी कि भाई सर्जरी हो जाती है तो बहुत खूबसूरत चेहरा हो जाता है। और भी
और तुम्हारे तो नाक पे शायद कोई एक दाग था जो तुम,
बिल्कुल नाक पे जैसे चांद पे दाग होता है उसी तरीके का मेरे नाक पे भी एक छोटा सा निशान था, सेम चांद के, चांद पे जैसा था वैसे ही। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि वो निशान भी हट गया होगा। और अब तो मैं और खूबसूरत, क्योंकि 2 सर्जरी भी हो चुकी थी, मैंने बड़ी खुशी खुशी 2 सर्जरियां भी करवा ली। और उसके बाद जब मैंने पहली बार अपने आप को शीशे के सामने देखा तो वो मेरे लिए ऐसा था कि जमीन आसमान एक हो गया, पैर से जमीन खत्म, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है मेरे लिए। मैंने, मेरा सबसे पहला सवाल शीशे को देख के अपने आप से ये था, मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने सिर्फ ना ही तो किया था उसको, उसने मुझे इतनी बड़ी सजा दे दी। और तब मैंने बोला कि मैं आत्महत्या कर लेती हूँ, मैं नहीं जी सकती इस चेहरे के साथ। तो उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ, यही गलती अटैक से पहले किया था कि पेरेंट्स से बात नहीं किया था, सिर्फ डर के वजह से, कि यही कि पेरेंट्स स्कूल छुड़वा देंगे, मेरा जो ड्रीम है वो सब ख़त्म हो जाएगा, मैं कहीं की नहीं रह पाऊँगी। और उसके बाद अगर आज भी मैं आत्महत्या करती हूँ तो कई सवाल मैं पीछे छोड़ जाऊँगी अपने पेरेंट्स के लिए, वो तिल तिल करके हर दिन मरेंगे। जो माँ 2.5 महीने मेरे लिए नहाई नहीं, जो पिता 2.5 महीने मेरे लिए सोए नहीं, मैं कैसे उनको ऐसे इन हालातों में छोड़ के जा सकती हूँ इन सवालों में समाज के बीच में, तो उस टाइम पे मुझे ज़रूरी ये लगा कि मैं उनसे बात करूं। और उसके बाद जब मैंने उनसे,
तुम लड़की हो इसलिए अपने से पहले इस हालत में भी तुम दूसरों का सोच रही थी,
शायद हो सकता है दूसरे तो नहीं बोल सकती क्योंकि
अपनों का, पर
बिल्कुल हाँ, कि हाँ उस टाइम पे
के बारे में,
बिल्कुल पेरेंट्स के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे वो सोसाइटी, वो लोग हाँ। जो बड़ी हिम्मत, मतलब अटैक से पहले मेरे हुआ करते थे और अटैक के बाद अब वो मेरे नहीं है, वो सोसाइटी ने साथ छोड़ दिया, वो दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, वो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, अब वो मेरे नहीं रहे तो मैं किसके सहारे, मतलब मेरे लिए तो हर दिन मेरे पेरेंट्स मरे हैं ना, सब कुछ मेरे पेरेंट्स ने किया है, तो मैं कैसे मर सकती हूँ एक ही पल में, जो कि मेरे पापा की बॉस शिरीन आंटी, मेरी लॉयर अपर्णा भट्ट, इन लोगों, ये लोग भी मेरे लिए हर दिन मेरे लिए जागते थे, रात रात में हॉस्पिटल में फ़ोन करते थे, इनका क्या रिश्ता था मेरे से, तो मुझे लगता था कि ये चार लोग मेरी दुनिया है, तो मैं ऐसे कैसे मर सकती हूँ। तो मुझे जब लगा, मैंने डिसीजन लिया कि पापा से बात करना है,
अच्छा।
तो उस टाइम पे मैंने पापा मम्मी को बिठाया और उनसे बात किया और उनसे कहा कि मेरे को मरना है, मैं इस चेहरे के साथ नहीं, एकदम क्लियर था मेरा कि आप मुझे मरवा दो, जो कि कुछ दिन पहले से सोसाइटी के लोग आए थे, उन्होंने ही ये बात पेरेंट्स को कही थी कि उसको इंजेक्शन दिलवा दो, उसको मरवा दो, ये क्योंकि
यहाँ तक बातें की,
बिल्कुल कि क्योंकि ये लड़की है, सबसे पहला सवाल कि शादी कैसे होगी,
लड़की हमारे समाज का सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहता है
कि शादी, सबसे बड़ा सवाल है कि शादी कैसे होगी। तो उस वक्त में फिर यही हुआ कि मैंने अपने पापा को कहा कि मैं इस चेहरे के साथ तो नहीं जी सकती हूँ और मुझे मरना है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने समझाया मुझे, सीने से लगाया, और उसके बाद उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है, एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको इसी चेहरे से प्यार होगा और एक दिन तुम इसी चेहरे के साथ आगे जाओगी। वो दो वर्ड मैं नहीं भूलती हूँ, मैं क्यों भूलूँ उनको और मैं क्यों कैसे भूल सकती हूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, उन्होंने मुझे सीने से लगाया है, उन्होंने डेथ से पहले भी, जब उनकी कल डेथ होने वाली थी और आज के दिन उन्होंने मुझे सीने से लगाया था, मैं कैसे उनका वो प्यार करना, वो सारी चीज़ें भूल सकती हूँ, और मैं कैसे उन दोनों का स्ट्रगल भूल सकती हूँ, और जो मेरे लिए ज़िंदा थे, आज भी मेरी माँ मेरे लिए ज़िंदा है, तो मैं कैसे इतनी आसानी से हार सकती हूँ।
ये बहुत हिम्मत की बात है कि जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आई अपनी मम्मी पापा की वजह से, यू डिसाइडेड टू बी ब्रेव एंड जो उन्होंने कहा वो सच हुआ कि तुम्हारे इसी चेहरे से लोग प्यार करते हैं और जो तुम्हारी शख्सियत है उसे किसी चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मी, हम बाकी बातें तो खैर करेंगी, आपकी एक चीज़ हमने नोटिस किया, आप अपना सरनेम नहीं लगाती।
मैं सबको मना करती हूँ, स्ट्रिक्टली मना करती हूँ, कोई भी मुझे लक्ष्मी अग्रवाल करके बोलता है, मेरा एकदम शुरू से फंड है, मेरे पापा ने भी कभी यूज़ नहीं किया है और मैं भी कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो जब बहुत ज़्यादा नीड लोगों को पढ़ने लगी कि नहीं हमें चाहिए, तो मैंने सा लगा दिया, तो ऐसी मतलब सा जो है लक्ष्मी सा, तो लोग पूछते हैं ये सा का फुल फॉर्म क्या है, जैसे आपने भी पूछा था कि फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म यही है कि स्टॉप एसिड अटैक्स।
अच्छा,
तो इसीलिए क्योंकि अगर आप कोई भी चेंज चाहते हैं, मेरा कोई अधिकार नहीं है कि मैं आपको बैठ के चेंज करूं, मेरा मुझ पे अधिकार है, तो मैं अपने आप से शुरू करूंगी। अगर 10 लोग खड़े हैं और वो गलत है, दूसरा लोग कह रहे हैं कि वो लोग गलत हैं, आप वहां मत जाओ, तो मैं तो गलत नहीं हूं ना, तो मैं वहां जाके क्यों उन लोगों को गलत बोलूं, मैं वहां पे जाके बात करूंगी, उसमें से एक तो सही निकलेगा, मतलब अगर सही भी नहीं होगा, अगर मैं अपनी बात रखूंगी तो वो एक तो सही हो जाएगा, और उसके वो एक इंसान 100 के बराबर होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव रहोगे, तो आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मतलब दे सकते हो और ले सकते हो।
सांप पहला सुर भी है और संगीत का आपको बहुत शौक है।
बिल्कुल है।
तो किस तरह के गाने आप गाना पसंद करती हैं, गुनगुनाती हैं?
मैं मोस्टली, मेरा एक गाना बहुत फेवरेट है, लग जा गले, अब वो सबका फेवरेट है तो वो गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा अटैक से पहले भी और अब तक भी ड्रीम रहा है कि कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं ज़रूर सिंगिंग करूँगी और कभी मुझे चांस मिलेगा और मुझे पक्का पता है कि मुझे कहीं ना कहीं एक बार तो ज़रूर चांस मिलेगा और मैं गाऊँगी ज़रूर।
आज चांस है
हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो ना हो शायद फिर इससे जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले।
कितना मीठा गाती हो, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यू नो लक्ष्मी, यू हैव डन मेनी थिंग्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इंक्लूडिंग व्हेन यू फाइल्ड दैट PIL,
जी
उसके बारे में बात करें।
2005 में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ और फिर उसके बाद मेरी लॉयर ने मुझसे पूछा, मेरी लॉयर का बहुत सपोर्ट रहा है मुझे और उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा केस लड़ा है, सबसे अच्छी बात उनकी ये रही है। और उन्होंने मुझसे यही चीज़ पूछी कि लक्ष्मी तुम एसिड के बारे में क्या सोचती हो, क्योंकि वो बहुत एकदम रिसेंटली का केस था और मुझे हर दिन चोट मिल रही थी, हर दिन ऑपरेशन जाना, कोर्ट जाना, यही सारी चीज़ें मेरे साथ चल रही थी और मैं इमोशनली भी बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उस वक्त में मुझे यही लगा कि क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है, मेरा उनसे ये सवाल था कि क्या एसिड बिकना बंद नहीं हो सकता है, जब ऋषिकेश में अंडा बैन हो सकता है तो क्या वो तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है ना, वो तो लोग खाते हैं, पर एसिड बहुत नुकसानदायक चीज़ है जो कि वो क्या बिकना बंद नहीं हो सकता है। तब हम लोगों ने फिर सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला। सही मायनों में मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे PIL के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मैं एक बहुत छोटी बच्ची थी और एक मासूम, जिसे मैं खुद ये बात आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत मतलब बहुत बोलती हूँ और मैं क्लियर अपने बारे में कह रही हूँ कि मैं जब अटैक से पहले मैं बहुत सीधी और बहुत चंचल टाइप की, अपने आप में जीना पसंद करती थी, अपने सपनों में जीना पसंद करती थी और खुद में खोई रहती थी, मैं ऐसी थी और मुझे कोई ऊंची आवाज़ में भी बोल देता था तो मैं अचानक से रो पड़ती थी, तो मतलब बहुत मासूम थी, पर मैं आज इतनी मासूम नहीं हूँ पर आज मैं मतलब क्योंकि सोसाइटी ने मुझे ऐसा बना दिया है, मुझे ठोकर दे दे के मुझे ऐसा बना दिया है, मैं चालाक भी नहीं हूँ अगर सही बोलूँ तो, चालाकी ऐसी नहीं है पर यह है कि चीज़ों को समझने लगी हूँ।
मासूम तो हो पर स्ट्रांग हो है ना
स्ट्रांग तो भी आप ही बता सकती हैं क्योंकि मुझे लगता है जो भी चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते रहते हैं मैं उससे लड़ने की ताकत रखती हूँ, क्योंकि एक ज़िंदगी मिली है और मैं उस ज़िंदगी में मतलब अगर मुझे ये मेरे ऊपर ये अटैक हुआ है उसके बाद, ये अटैक तो चेहरे पे दिख रहा है पर उसके बाद भी बहुत सारे अटैक हुए हैं मेरी लाइफ में, तो मैं हर दिन अपनी लाइफ में ये मान के चलती हूँ अगर मैं आज सुबह हुई है मेरे लिए तो कल मैंने अपने आप को तैयार किया है मेंटली प्रॉपर कि हाँ लक्ष्मी कल आपके लिए कोई एक नया चैलेंज आने वाला है, तो मैंने कल ही अपने आप को तैयार किया है क्योंकि मुझे लगता है कि सर्वाइवर हर इंसान है, हर इंसान के पास दुख है और हर इंसान को जब दुख मिलता है मुझे लगता है दुख में ही सबसे बड़ा सुख छुपा होता है, हमें उस सुख को ढूंढना है उस दुख में, और हम है कि हार के बैठ जाते हैं, रोते हैं। अगर ऐसा ही है तो कम से कम अपने नीचे झांक के देखो कि कितने ऐसे लोग दुखी हैं जो बहुत परेशान हैं। आज बहुत सर्दी है, अगर आप बाहर रोड में फुटपाथ में लोगों को देखें, आपके सर पे फिर भी छत है, आपके पास रजाई है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है। उनसे ही सीख लो, क्योंकि आप तो अगर आप लोगों को नहीं देख सकते हो तो आप रोड में चल रहे हो, आप उनको तो नहीं नकार सकते ना। मतलब हिम्मत के लिए बहुत सारी चीज़ें आपके सामने है, पर आप उसको देखना नहीं चाहते हो। आपको लगता है मेरा दुख है, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे रोना है, मैं कैसे किसी को फ़ोन करके किसको बताऊँ, क्या करूँ, उलझन। सल्यूशन भी आपके पास है, पर आप उस मतलब आप जब भी किसी को फ़ोन करते हो कि मैं बहुत परेशान हूँ, वो सामने वाला आपको एक ही बात कहता है, थोड़ा थोड़ा रुक जाओ,
सब्र करो,
मतलब ठीक हो जाएगा। वो यही बोलता है, सब ठीक हो जाएगा। वो इतना ही बोल भी सकता है, वो क्या करेगा। आखिर में एक महीने के बाद सल्यूशन आप ही को निकालना पड़ता है। अगर आपने 5 दिन खुद पे इंतज़ार कर लिया होता तो शायद वो सल्यूशन आपके पास खुद निकल आता और आपको 10 लोगों के आगे रोना नहीं पड़ता।
सो द यंग 15-year-old हु वाज वेरी शाय, अब बेबाक होकर अपनी बात कहती है।
बिल्कुल कहती हूँ, मेरा अधिकार है कहने का। मुझे एक लाइफ मिली है और मैं उस लाइफ में दब के नहीं जीना चाहती हूँ। अगर आज मेरे ऊपर अटैक हुआ है तो उसके बाद मैं अब अपने ऊपर और अटैक नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ, और किसी और के ऊपर भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मेरे को लड़ना है तो मुझे, मैं बार बार यही एक बात कह रही हूँ कि एक लाइफ मिली है, उस एक लाइफ को ना मतलब अच्छे से ज़िंदगी में जी लो, अच्छे तरीके से उस दुख को भी इतना इतना पावर अंदर लेके आ जाओ कि वो दुख भी सुख में बदल जाए, वो डर जाए और डर के आपसे भाग जाए।
ये जब आपकी मैं बातें सुनती हूँ, इनका ऑफ कोर्स यू आर हेल्पिंग अ लॉट ऑफ अदर वुमेन एंड मेन जो सर्वाइवर्स ऑफ एसिड अटैक हैं, लेकिन ये बातें जो हैं ये हर किसी के लिए इंस्पिरेशन की हैं, क्योंकि एसिड अटैक एक फिजिकल हो ये ज़रूरी नहीं है।
ये बहुत बड़ा क्राइम है, अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा क्राइम है।
इट्स वर्स देन मर्डरिंग समवन।
बिल्कुल, ये मर्डर पे ही रखा गया है कि आप अगर आज आप इस चेहरे को देख रहे हैं तो ये चेहरा 7 ऑपरेशन के बाद तैयार हुआ है, वो भी 2005 से 2009 तक में। इसके और भी ऑपरेशन होने हैं पर मैं खुद नहीं करा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं रखती, मैं क्यों अपने आप को पेन दूँ। पर कहीं ना कहीं एक एक लड़की के 80-80 ऑपरेशन होते हैं।
80-80 ऑपरेशन?
बिल्कुल, बल्कि 100 से भी ऊपर चले जाते हैं ऑपरेशंस। तो आप समझ सकते हैं कितना पेनफुल होगा और कितना दर्दनाक, क्योंकि पूरा आप एकदम नेचुरल चीज है वो एकदम से बर्बाद हो गई है।
सो उसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड अटैक्स हैं उसमें नाक गायब हो जाती है, आंखें, अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर आई,
बल्कि फेस का आधा फेस, क्योंकि 48 आवर्स के अंदर ही अंदर एसिड पूरी हड्डियों को गला देता है। और जो भी एसिड डालता है वो गंदक का एसिड डालता है, जो बैटरी से निकाल के उस एसिड को वो एसिड होता है।
And that is very, very strong.
बिल्कुल होता है कि आप अगर इस पे डाल दोगे तो ये कांच भी बर्बाद हो जाएगा, प्रॉपर तरीके से उसकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी।
क्योंकि तुम पे जो एसिड अटैक के बाद 20-22 बाल्टी पानी डला था और तब भी जब पापा ने गले लगाया तो उनकी शर्ट
जल गई थी,
इतना स्ट्रॉन्ग ये।
बिल्कुल, तब तक उसका इतना असर था।
तो जब PIIL 2006
में PIIL डाला
तो उसका क्या असर हो?
जब 2012 में पापा की डेथ हो गई तो उसके बाद मैं जॉब के लिए सर्वाइव कर रही थी और मेरे चेहरे की वजह से कोई मुझे जॉब नहीं दे रहा था, मैं बहुत परेशान थी जॉब के लिए। तो उसके बाद फिर एक कैंपेन
पर, ऐसे में पढ़ाई तो बीच में रह गई होगी।
हाँ, 2007 में मुझे घर वालों ने पुश किया, शिरीन आंटी ने पुश किया कि आप ना आप पढ़ो, रेगुलर स्कूल जाओ। तो मैंने कहा मैं रेगुलर स्कूल तो नहीं जा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि आप अपने स्कूल में जाओ। मैंने कहा वो तो कभी नहीं हो पाएगा, वापस उस स्कूल में जाना कभी नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारे स्कूल के ऑप्शंस दिए गए तो मैं नहीं गई। उसके बाद उन्होंने फिर मैंने कहा मैं ओपन कर लेती हूँ। 10th में फिर मैंने एडमिशन लिया और मैंने टेंथ किसी भी तरीके से कर लिया। 2009 में मैंने टेंथ कंप्लीट किया, ब्यूटिशन किया, ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ये सारी चीज़ें मैंने की। और फिर वहीं से मैंने खुद से चैलेंज लेना स्टार्ट किया। 2009 से एक्चुअल मेरी लड़ाई शुरू हुई अपने आप से,
जब चेहरा रिवील करना शुरू किया।
बिल्कुल, चेहरा मैं एकदम कवर करके चलती थी 2005 से 2009 तक। मैंने एकदम, पहले मैं दुपट्टे से घूंघट करके चलती थी, उसके बाद फिर मुझे टेंथ में मैं जब जाने लगी तो ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता था। तो मेरे को टीचर ने सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, आप बुरखा पहनना स्टार्ट करो, उसमें नेट लगा होता है तो आप आराम से देख सकते हो। तो उसके बाद मैंने तुरंत जाके उसी दिन बुरखा खरीद लिया।
और लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं तुम चेहरा
नहीं, किसी ने नहीं कहा। लोग बस कहानियां सुनते थे और बेचारी बोलते थे और तरस खाते थे, ऐसा होता था। तो उस वक्त में फिर मैंने फटाफट बुरखा लिया और बुरखा पहन के जाने लगी। मेरे को और थोड़ा अच्छा लगने लगा क्योंकि मुझे दिखने लगा,
एक फ्रीडम सी हो गई।
बिल्कुल। फिर उसके बाद 2009 में मैं अपनी ड्रेसेस बनाती थी और उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज हुआ कि लक्ष्मी, इन ड्रेसेस को पहनने का क्या फ़ायदा है जब आप अपना चेहरा ही ढक के चलती हो। तो फिर मैंने अपनी मैम से पूछा, मम्मी से पूछा, उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ है, आपको अपना चेहरा खोल के चलना है नहीं चलना है ये आपको डिसाइड करना है। तो मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं फिर धीरे धीरे करके चेहरा ओपन करने लगी और उसके बाद जैसे ही मैंने चेहरा ओपन किया, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज था। सी से चेहरा और सी से चैलेंज। और इसके बाद जो इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया, लोगों के रवैये बहुत ख़राब थे। लोग बोलते थे कि पीछे से तो बहुत सुंदर दिखती है, सामने से इतनी डरावनी दिखती है, बच्चे देख के डर जाएंगे, ऐसे
ऐसा कहा।
बिल्कुल कहते थे। और खासकर पता है लड़कियाँ, सबसे अच्छा। दुख की बात मुझे ये लगती थी कि सबसे ज़्यादा जो मजाक उड़ाती थी वो लड़कियाँ उड़ाती थी। जब मैं जाती थी तो कहीं से भी रोड से निकल रही हूँ, कॉलेज पढ़ गया, कुछ भी हो गया, ओए देख 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 क्या है क्या है, ऐसे करके लड़कियाँ रिएक्ट करती थी, लड़कों को दिखाती थी। तो मुझे एकदम ऐसा लगता था कि जहाँ पे मुझे लगता था कि इन लोगों को बोल दूँ मैं वहाँ पे बोल देती थी। इसलिए क्योंकि मुझे लगता था कि जब मेरे अंदर उतनी हिम्मत है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर उतनी हिम्मत भी नहीं होती कहने की और वो आत्महत्या भी कर सकते हैं सिर्फ इतने छोटे से शब्द में।
तो ऐसे ऐसे अगर कोई कुछ कहता था तो व्हाट वाज योर रिएक्शन, क्या बोलती थी तुम वापस?
मैं पास जाके कहती थी आप मेरा चेहरा देखो, दूर से तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा ना, तो अब आप मेरा चेहरा देखो। हाँ। जो कहना है मेरे मुंह पे कहो, आप किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? आपको तो मैंने नहीं कहा ना कि आप मुझे ऐसे देख रहे हो, तो आप मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? जब मैं आपको नहीं देख रही तो आपका कोई अधिकार नहीं है मुझे देखने का। फिर धीरे धीरे मुझे मेरे किसी दोस्त ने मुझसे एक बात कही, जब कुछ कुछ ऐसा होता था कि लोगों के कुछ कुछ लोगों को जवाब देने का मन ही नहीं करता था, तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि जब सोच के देखो, जब ताजमहल अगर दिल्ली आ जाए तो लोग मुफ्त में तो देखना चाहेंगे ना। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मतलब एक इंसान ने मुझे इस तरीके से कहा। हाँ। कि लोग इतना पैसा फूंक के ताजमहल देखने जाते हैं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। हाँ। और अच्छी बात है लोग मुझे देखते हैं। हाँ। मतलब उन सारे लोगों से मैं एकदम डिफरेंट दिखती हूँ तभी तो मुझे देखते हैं। तो देखो मुझे, आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, सीधी सी बात ये है। लेकिन ये है कि जब लोग शादियों में जाते हैं, शादियों में भी जाने के बाद लोग, मतलब जो दुल्हन दूल्हा है जिनकी शादी में जाके आप खा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सब कुछ, उनके बारे में भी आप बोल रहे हैं।
हाँ।
आप किसी को नहीं छोड़ते हैं। और वैसे भी क्राइम मैंने नहीं किया है, जिसने क्राइम किया वो अपना चेहरा ढके। इस सोसाइटी को शर्म आनी चाहिए।
बिल्कुल।
कि इस सोसाइटी से ही मैं निकली हूँ और मेरे ऊपर अटैक हुआ है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और उसी सोसाइटी का वो लड़का है जिसे वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं।
हाँ, उसने थोड़ी देर जेल काटी, आई, शादी कर ली,
एक बैक महीने में। हाँ, उसने तो, मतलब आपकी सोच कैसी है?
हाँ, बिल्कुल।
आप क्राइम को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि क्राइम हुआ है, इसको कैसे रोका जा सकता है। मतलब जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, आगे कोई और लक्ष्मी निर्भया ना हो। मेरा काम ये है, यही मैं आप लोगों को बताना भी चाहती हूँ, पर आप मानना ही नहीं चाहते हैं।
देन दैट इज देयर प्रॉब्लम नॉट योर्स.
हाँ, तो मेरे एकदम वैसा रहते थे कि देखो मुझे मुझे कोई इशू नहीं है, पर लेकिन जहाँ पे मुझे लगता था कि इनको जवाब देना है तो देना ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मजबूर लोग भी होते हैं, क्योंकि मैं भी उस टाइम से पहले मजबूर थी, मैं भी अपने चेहरे को पसंद नहीं करती थी, मुझे अपने आप से बहुत धीरे धीरे करके
तो
प्यार
जो
हुआ.
बाकी एंड देयर आर मेन एंड वुमेन जिन पे
एसिड अटैक. हाँ हाँ,
तो ऐसे लोगों को हाउ डू यू हेल्प देम टू रिहैबिलिटेट देमसेल्व्स?
रिहैबिलिटेशन इज मस्ट इम्पॉर्टेंट किसी भी क्राइम को रोकने के लिए. क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो कि घर में बंद हैं और वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे और हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे. अभी भी जब भी आपका प्रोग्राम होता है, और मैं हमेशा इसलिए आती हूँ क्योंकि आपका चैनल गांव-गांव में जाता है. गांव-गांव के लोग आज भी दूरदर्शन देखना पसंद करते हैं, और वहाँ पे लोग देखते हैं उस चीज़ को, और वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे सर्वाइवर हैं. जब वो मुझे देखेंगे ना इस प्रोग्राम के थ्रू, बहुत सारी लड़कियाँ रिहैबिलिटेट होंगी, क्योंकि जब उनको ये लगेगा कि ये कुछ कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ.
बिल्कुल.
तो ऐसे ही इम्प्रूव होता है, ऐसे ही इंसान के अंदर हिम्मत आती है. क्योंकि जब हम बहुत सारी लड़कियां मिलके बाहर आईं और अपनी बात को कहना शुरू किया, तभी सामने वाले को हिम्मत भी मिलना स्टार्ट हुआ. और उसके बाद जब हम किसी से भी मिलते हैं, हम लोग रिच आउट भी करते हैं लोगों को, और जब वहाँ पे लड़कियाँ मिलती हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना, उनको निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं. बहुत सारे लोग बहुत जल्दी बुरे लोगों में फंस जाते हैं, लोग यूज़ करके छोड़ देते हैं. पर कभी कभी ऐसा होता है कि जिनको सच में मदद की ज़रूरत होती है और उनको मदद मिल ही नहीं पाती है, तब उनको बहुत मुश्किल होता है समझाना. कहीं पे भी एसिड अटैक होता है, तुरंत हमारी टीम वहाँ पहुँचती है, और वहाँ पे उनकी वहीं से एक काउंसलिंग शुरू हो जाती है.
अच्छा.
पेरेंट्स की भी, और उस लड़की की भी या उस लड़के की भी. और उनको हम लोग समझाते हैं, क्योंकि अगर फर्स्ट चीज़ की ट्रीटमेंट, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जिसे यही नहीं पता कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है. तो हम लोगों की कोशिश यही रहती है कि सबसे पहले एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाए, जान के साथ साथ आँख भी बचे.
हाँ, वो बात ज़रूरी है.
बिल्कुल. अगर आँख चली गई तो वो पूरी लाइफ परेशान रहेगा वो इंसान,
क्योंकि सर्जरी से नोज और ईयर्स रीबिल्ड हो सकते हैं.
बिल्कुल.
लेकिन आईज तो नहीं हो सकते.
आईज, क्योंकि अंदर एक बार एसिड चला गया तो बहुत, मतलब वो दोबारा वो आई नहीं आ सकती है. तो वही सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए बात, क्योंकि डॉक्टर्स भी यही देखते हैं कि सबसे पहले उसकी
जान बचे.
तो हम ये कोशिश करते हैं कि जान और आँख दोनों ही बच सके. तो ये कि और कितने लोगों
को, आर यू डूइंग सम काइंड ऑफ वर्कशॉप्स जिसमें जो लोग हैं उनकी मदद हो, और डॉक्टर्स जो हैं उनको ये बात समझ आए, जो फर्स्ट एड वर्कर्स हैं उनको ये बात समझ आए, उसके लिए क्या
बिल्कुल
करते हो आप लोग?
क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आपके प्रोग्राम के जरिए मैंने ये बात बोली, और उसके बाद मैं बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाके स्पीच देती हूँ, बात करती हूँ और उनको जागरूक करती हूँ उसके लिए. बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है. जैसे बीच में चला था व्हाट्सएप पे एक बड़ा मैसेज चल गया कि अटैक हुआ और दूध डाल दिया.
हाँ.
ये गलत है. इस पे मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने ये बात बोली कि वो क्या है, वो एसिड है या केमिकल है.
हाँ.
तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट, जो पहला ट्रीटमेंट यही है कि जितना हो सके पानी डाला जाए.
अच्छा.
उस स्पॉट पे जितना हो सके, और जिस एरिए पे, जो भी पार्ट पे एसिड डला है, उस पार्ट को झुका के उस पे पानी डाला जाए,
ताकि वो एसिड बाकी बॉडी पे ना लगे.
बॉडी में, जैसे कि दो कोक की बॉटल थी, उसमें दो, मतलब पानी की बॉटल, आधा पानी था उसमें, और मेरे फेस पे जब पानी डाला तो वो यहाँ आ गया.
ओ,
यहाँ पे ये पानी का ही बर्न है.
ओ,
एसिड तो चेहरे पे गिरा था, वो जो पानी डाला था वो यहाँ से आगे सीधे यहाँ पे आया, तो वो जल गया.
किसी बाईस्टैंडर ने
एक्चुअली, मैं बल्कि वहाँ तो मैं मर ही जाती.
हाँ.
अगर वो एक अरुण सिंह अंकल थे, उन्होंने आके मुझे सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने पानी भी डाला.
बट ही डिडंट नो कि पानी कैसे डालना है.
हाँ, हाँ. क्योंकि सब घबरा जाते हैं. तो वहाँ पे घबराने की जगह आप वहाँ पे जितना हो सके पानी इकट्ठा करें. और इतना देर तो लोग वहाँ पे ना गोल चक्कर बना के तमाशा ही देख रहे होते हैं. उतनी देर में आप पानी इकट्ठा कर लो, और उसके ऊपर पानी डाल दो, PCR बुला दो, एक अच्छे हॉस्पिटल ले जाओ. क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन से हॉस्पिटल लेके जाए. दिल्ली में अगर अटैक हुआ है, सफदरजंग हॉस्पिटल, RML हॉस्पिटल और आपका पंथ हॉस्पिटल, ये तीन हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट, क्योंकि PCR हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाती है, तो ये तीन हॉस्पिटल सबसे बेस्ट है. और बहुत सारे हॉस्पिटल में तो बर्न सेंटर ही नहीं है, वहाँ पे तो मरीज मर जाता है. ऐसे हम कई मरीजों को निकाल के लेके आए हैं वहाँ से, आज जो बहुत खूबसूरत दिखते हैं,
जैसे तुम.
तो यही है एक फर्स्ट ट्रीटमेंट.
अच्छा, ये तो बात हुई कि फर्स्ट एड ऐसे की जाए, लेकिन जो काउंसलिंग है
जी,
उसके लिए क्या 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 किया जा रहा है?
काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्वाइवर के लिए भी और उसके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो वक्त बहुत ख़राब होता है. वो किसी पे बिलीव नहीं कर पाते हैं, तो काउंसलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और अभी यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो जो लड़कियाँ रिहैबिलिटेट हो चुकी हैं, कहीं पर भी एसिड अटैक होता है, वो पहुँच के खुद काउंसलिंग करती है.
वंडरफुल ना.
बिल्कुल. अभी जो भी लड़कियां आती हैं, हमारे पास कोई भी प्रोफेशनल काउंसलर नहीं है, हम खुद उनको काउंसलिंग देते हैं.
रियली?
जी, हम खुद ही उन सर्वाइवर से बात करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं. अभी तक कोई काउंसलर नहीं है, और हम मतलब 4.5 साल से मैं इस पे काम कर रही हूँ. लकली बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ. बहुत सारे लोग कहते हैं हमें मदद करनी है. आप इतनी मदद कर लो, आप आओ, एक दोस्त बन जाओ, सिर्फ उसकी बातें सुनो. बस सीधी सी बातें, ये उसकी काउंसलिंग हो गई.
देखा जाए तो कितना, जिस तरह से यू आर टेलिंग अस, इट्स सो सिंपल. पहली बात कि फर्स्ट एड में पानी जितना ज़्यादा हो सके डालो
जी,
एंड ट्राई टू अवॉइड द वाटर स्प्रेडिंग ओवर द बॉडी. एंड सेकेंड, जब तक प्रोफेशनल काउंसलिंग नहीं होती है, तो जो आसपास के लोग हैं वो अगर और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसका दर्द सुन ले,
सुन ले,
वो बहुत बड़ी बात होती है.
बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़.
वापस आते हैं PIL पर
जी.
PIL 2013
बिल्कुल ये तो रह ही गया है. 2013 में इसका जजमेंट आया. जुलाई 18 जुलाई को. डेट काफ़ी चेंज होती रहती है. तो फाइनल उसका डिसीजन आया. तो डिसीजन में कोर्ट ने यही कहा कि ऐसे खुलेआम एसिड नहीं बिकेगा. हाँ, जो भी खरीदेगा उसके पास ID प्रूफ होना चाहिए, जो बेचेगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था. तो उसके बाद
इसमें किस तरह का एसिड आता है जो लोग घरों में यूज करते हैं?
बिल्कुल, जो दुकानों में मिलता है, सारे एसिडों पे बैन था.
और जो ये बैटरी वाला एसिड,
बिल्कुल सब पे बैन था,
हर तरह के एसिड.
बिल्कुल. तो अगर जो भी खरीदेगा जाके, अगर मैं किसी शॉपकीपर से जाके बोलती हूँ कि मुझे एसिड चाहिए, और अगर उसने कहा कि ये लो, और उसने कोई आईडी प्रूफ नहीं मांगा, कुछ नहीं, उसका पूरा काम है, जैसे हम सिम कार्ड खरीदते हैं, पूरा डिटेलिंग उसका ऐसे ही होगा. पर उसके बाद क्या हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, इसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था. तब हम लोगों ने एक शूट एसिड करके कैंपेन स्टार्ट किया, और उसे हम लोगों ने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि आप कैमरा ही लेके जाओ, और आप सीधा अपना मोबाइल लो और अपने जेब में रखो, और आप जाके फुटेज बनाओ और वो डालो, देखो कितना इम्पैक्ट पड़ता है, और उनको समझाओ ये चीज़. उसके बाद मैंने खुद जाके एसिड खरीदा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी. हाँ, मैंने लगातार एक महीने एसिड खरीदा है, मुझे आराम से मिल गया, और प्रॉपर फुटेज बनाया उसका हम लोगों ने. और जब भी मैं एसिड मांगती थी, आराम से 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये का एसिड मुझे मिल जाया करता था. और वो अभी किसी से भी बोलो कि आप इतना इजीली एसिड कैसे दे रहे हैं, तो उनका एक ही बात कहना था, देखो हमने हाथ में डाला है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है. मैंने कहा आँख में डाल के देखिए ज़रा, एक बार पी के देखिए इसको, कितना इम्पैक्टफुल होगा ये, तब आपको समझ में आएगा.
तो एसिड हाथ पे डाला है, कुछ नहीं हुआ, ये कैसे?
वो डाइल्यूटेड एसिड है.
हाँ.
कि भाई ये तो घरों में यूज होता है, हाथ में कुछ नहीं होगा. पर नुकसान जब कोई एसिड डालेगा, ये वाला एसिड हमेशा लोग क्या करते हैं, आंख में डाल देते हैं.
हाँ.
पिला देते हैं. मोस्टली केसेस में ऐसा होता है कि वो पिला देते हैं ये एसिड. तो अंदर की चीजें तो बड़ी मतलब सॉफ्ट है, और वैसा है कि वो तो आराम से इंसान मर जाएगा. बहुत सारे घरों में क्या होता है, एसिड लाके रख दिया जाता है, बच्चों को नहीं पता होता है.
हाँ.
क्योंकि उसका कलर बड़ा लेमन और वाइट होता है.
हाँ.
तो उनको लगता है कि पानी है.
हाँ.
उठाया और पी लिया. बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि बच्चे मर गए हैं.
हाँ. और वो बॉटल्स भी ऐसी यूज करते हैं जिसकी
घरों वाली. हाँ, और हाँ, पानी की बॉटल है.
हाँ, या कोल्ड ड्रिंक की बॉटल.
हाँ, बस उसी में. तो बच्चे बड़ा जल्दी स्कूल से, ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे कि पी लिया बच्चों ने और उनकी डेथ हो गई है.
That's so sad.
तो लेकिन अभी ऐसा हुआ है कि मतलब बहुत सारे छापे पड़े हैं इस पे, बहुत सारी बातें हुई. अब तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ उस एरिया में तो गलती से भी कोई एसिड नहीं देता है. मैं जाती हूँ अब तो बिल्कुल भी नहीं देते हैं. अच्छा नहीं एसिड नहीं है हमारे पास. मतलब ऐसा रिएक्शन मुझे मिलता है लोगों की तरफ से.
इतना डर है,
डर होने लगा है. तो काफी जगहों में एसिड नहीं मिल रहा है.
वेरी गुड.
प्रॉब्लम ये आ रही है एसिड की कि जो एसिड मिलता है लोग क्या करते हैं, जिनको डालना होता है, जिसने मेरे ऊपर एसिड डाला उसने किसी नॉर्मल मार्केट से नहीं लिया है, वो गाजियाबाद से एसिड लेके आया था.
अच्छा So, मतलब ये जो बैन एसिड का है वो सिर्फ दिल्ली एरिया में है?
नहीं नहीं ये तो अब तो हर जगह हो गया है.
अच्छा पर उसे गाजियाबाद में मिल गया था.
वो तो 2005 की बात थी.
की बात है.
और रिजल्ट इसका 2013 में आया था. तो गाजियाबाद से वो एसिड आराम से बियर की बॉटल में एसिड लेके आया था. इसका एक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ. एसिड बिकना बंद हो या ना हो, एसिड की गलती नहीं है. अगर ये गिलास आज सामने रखा है तो गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है आपकी और लोगों की. एक्चुअली में एसिड हमारे दिमाग में है, हमें दिमाग से एसिड को निकालना है.
ये बहुत बड़ी बात कही आपने
जी. और वो एसिड आता कहाँ से, हम सिर्फ इस अराउंड की बात क्यों करें, आज की बात क्यों करें, मेन लॉजिक पे जाते हैं, उस बैकग्राउंड पे जाते हैं जो एसिड पनप के आता है और वो किसी के चेहरे पे डाल दिया जाता है या किसी के प्राइवेट पार्ट पे डाल दिया जाता है जब बेटा नहीं होता है तो.
You're so right कि जो एसिड है वो हमारे दिमाग में है
जी,
है ना. और ये सब होने के बावजूद एसिड अटैक तो बंद नहीं हुए.
बिल्कुल बंद नहीं हुए. लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि एसिड अटैक आज के टाइम में ज़्यादा हो गए हैं. मैं उनसे एक बात यही कहना चाहती हूँ कि एसिड अटैक ज़्यादा नहीं हो गए हैं, हाईलाइट होने लगे हैं. जो सर्वाइवर कल तक अपने आप को बंद रखती थी आज वो अपने हक के लिए लड़ने लगी है. एसिड अटैक मैं तो कही नहीं रही कि बंद हो गए हैं. प्रॉब्लम ये है कि एसिड कहाँ से पनप रहा है. अगर कानून की बात करें, फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जल्द से जल्द पनिशमेंट देना चाहिए. सेकंड ये कि आप पनिशमेंट जब दे देते हो तो सर्वाइवर को भूल जाते हो. उसकी रिहैबिलिटेशन पे कुछ तो करो. अगर आज मैं रिहैबिलिटेट हुई हूँ, कल वो क्रिमिनल बाहर आएगा क्योंकि उसने ये सोच के मुझे जान से मारने के लिए उसने एसिड नहीं डाला था. उसने मेरे चेहरे पे एसिड इसलिए डाला था कि तुम मेरी नहीं तो तुम किसी की नहीं हो. और तुम्हें अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है इसलिए. और तुम अब चार दीवारी में कैद रहोगी. उसने ये सोच के एसिड डाला था. तो अगर रिहैबिलिटेशन पे काम होगा जो सर्वाइवर्स के साथ हो चुका है, हम क्यों वेट कर रहे हैं कि आज किसी के साथ हो और उसका रिहैबिलिटेट करें. सबसे पहली चीज़ कि जो भी लड़कियां होती हैं 18 से नीचे होती है, सबसे ज़्यादा केसेस उनके साथ होते हैं. तो उनकी एजुकेशन स्किल्स रिहैबिलिटेशन, अगर वो जब ग्रोथ करके आगे आएंगी, उनकी जॉब जब वो ये सारी चीज़ें पा लेंगी तो एक सोसाइटी में मैसेज जाएगा.
और सोसाइटी को भी सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है.
बिल्कुल. क्योंकि लोग जॉब नहीं देते हैं, अभी भी नहीं देते हैं लोग जॉब. बहुत मुश्किलें आती हैं, ऐसी बात नहीं है. मैं क्यों ना करूँ, क्यों कहूँ मैं कि बहुत अच्छा हो गया है. अच्छा हुआ है पर जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हुआ है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी केसेस हुए हैं उनके रिहैबिलिटेशन पे काम करना. तो जो लोगों के दिमाग में एसिड अभी भी चल रहा है तो वो कहेंगे मैं तो ये सोच के एसिड डालने जा रहा था कि ये लड़की मतलब चार दीवारी में कैद रहेगी. बल्कि वो और हाईलाइट होती है. पूरी दुनिया में उसका नाम होता है. फैशन शो में जाती है, रैंप वॉक करती है. अटैक से पहले वो नहीं करती थी. तब तक तुम जानते थे, अटैक के बाद पूरी दुनिया जानती है. तब तक तुम बात करना चाहते थे. आज उससे लाखों लड़के प्यार करने लगे हैं. जब भी वो कहेगी शादी करना है तो कोई भी उसके लिए शादी के लिए खड़ा हो जाएगा. तो वो मैसेज हमें सोसाइटी को देना है.
अच्छा फॉर यू पर्सनली, इतना जो दुख झेला है, आर यू एबल टू इन योर हार्ट फॉरगिव द अटैकर?
जब मेरे ऊपर अटैक हुआ उसके बाद मैंने उस इंसान को तो माफ कर दिया था कि भाई मैंने अपने लिए उसको माफ कर दिया. पर उस इंसान के वजह से मेरे पूरे परिवार पे अटैक हुआ है तो मैं उसके लिए उसको कभी नहीं माफ़ कर सकती. पर हाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जब भी वो जेल से बाहर आए वो इतना करे, उसके आज बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों को बताए. लोगों ने कहा कि आप उसको दोबारा अंदर डालो, मैं मतलब मैं उसकी जैसी थिंकिंग नहीं रखती हूँ. बस मेरा ये मानना है कि तुमने इतना टाइम काटा है और तुम रियलाइज करो उस चीज़ को कि तुमने ये किया है, और तुम अपने बच्चों से शेयर करो और उनको बताओ कि वो कभी ऐसा कोई क्राइम ना करे और वो खुश रहे अपनी लाइफ में. क्योंकि जो मेरा मेरे साथ हुआ है, जो मेरे परिवार के साथ हुआ है, मैं कभी नहीं चाहूँगी वो किसी के साथ भी हो, चाहे वो अटैकर क्यों ना हो.
और जो परिवार के साथ हुआ है वो अब रिवर्स तो हो नहीं सकता.
नहीं हो सकता है
रिवर्स तो खैर नहीं हो सकता है, लेकिन एक फ्यूचर होता है और उसके सपने हम सब देखते हैं. व्हाट इज़ द काइंड ऑफ ड्रीम दैट यू ड्रीम नाउ?
मेरा जो ड्रीम है वही शुरुआत में ही कहा कि सिंगर बनने का मेरा जो सपना है वो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा. जब तक हूँ तब तक वो सपना मेरा रहेगा. और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और ड्रीम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो एक सिलेक्टेड ड्रीम है वो यही है.
अच्छा, एक छोटा सा जो आपके घर में टॉय है वो भी सपना है, सुंदर सा पीहू.
पीहू मेरी बेटी.
स्वीटेस्ट साउंड पीहू. तो व्हाट इज योर लाइफ विद हर? लाइक शी इज टू नाउ?
नहीं, टू एंड हाफ.
टू एंड हाफ
हाँ. पर वो अभी एकदम मतलब वो इतनी शार्प माइंड है और वो इतनी मतलब मेरी बेटी है. और मुझे खुद ही कहना पड़ रहा है इस बात के लिए क्योंकि मैं उसके साथ 24 आवर्स रहती हूँ. वो बहुत समझदार बच्चा है. मतलब जब से वो इस दुनिया में आई है और जब वो पहली बार जब आई थी और वो रो रही थी, तो डॉक्टर जब उसको लेके आ और उन्होंने मेरे कंधे पे रखा तो वो चुप हो गई.
How lovely, huh?
तो डॉक्टर ने कहा कि अभी से तुम लोगों का इतना ज़्यादा अटैचमेंट है. तो मेरी बेटी और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटी हुई है. और मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी जब बेटी मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि बेटा होगा बेटा, जो पहले से ही होने लग जाता है कि बेटा होगा बेटी होगी ये सब चीज़ें. तो सब लोगों ने नाम रखना स्टार्ट कर दिया कि मतलब लड़के का नाम रखा, लड़की का किसी ने नाम नहीं रखा. तो मैं उसके होने के 2 दिन पहले जब मैं वॉशरूम गई तो मेरे अचानक से दिमाग में क्लिक किया कि अगर मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम पीहू रखूंगी.
ओह हाउ ब्यूटीफुल.
और उसके बाद 2 दिन के बाद जब मैं डिलीवरी के लिए गई तो मेरी बेटी पीहू ही हुई. और उसके बाद जैसे ही डॉक्टर्स ले गए तो मैं सोच रही थी क्या हुआ है, मुझे जल्दी से बताए कि मतलब क्या है. और जब उसको लेके आए वो इतनी प्यारी इतनी प्यारी. और मेरे को सबसे पहली चीज़ ये लगी कि मेरी बेटी तो नहीं हो सकती है, इतनी खूबसूरत मतलब इतनी प्यारी बच्ची. और क्योंकि बहुत सारी
प्यारी सिर्फ तुम्हारी हो सकती है.
मतलब लोगों ने कहा कि उसको निशान हो सकता है वो सारी चीज़ें क्योंकि आपको ये निशान है ये सारी चीज़ें. तो ऐसा डर तो मेरे अंदर नहीं था लेकिन मुझे मतलब ये था कि जब उसको मैंने देखा तो मुझे लगा कि मेरी बेटी है. और उसके बाद उसकी वो मतलब वो उसकी मुस्कान, वो उसका प्यार. और वो आज 2.5 साल की हो गई है पर वो ऐसा लगता है कि वो 15 साल की है. वो इतनी इंटेलिजेंट, इतनी शार्प माइंड है और वो इतनी समझदार बच्ची है कि.
और वो तुम्हारे साथ बहुत सारे एसिड अटैक सर्वाइवर्स को मिली भी है.
बिल्कुल.
और उसमें जजमेंट नहीं है कहीं.
सबसे अच्छी बात ये है कि वो इतने अच्छे कॉज के बीच में पल रही है. मेरे लिए लक है ये कि वो इतने सारे लोगों के बीच में है, जिससे भी वो मिलती है सबको हग करती है, प्यार करती है. मतलब उसका बड़ा अच्छा रिलेशन है सबके साथ. कभी किसी से ये नहीं कहती कि तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों है. मैं थोड़ा सा भी तैयार हो जाती मुझे कहती है मम्मा आप इतनी सुंदर लग रही हो. उसका एकदम ऐसा एकदम क्लियर है. कोई भी तैयार होगा उसको एकदम कहिए आप इतने सुंदर लग रहे हो. वो बड़ा अच्छा लगता है देख के. बिल्कुल. बहुत अच्छे से वो पल रही है, बढ़ रही है, बहुत अच्छी उसको परवरिश मिली.
हमारा जीत तो नहीं जाता है लेकिन प्रोग्राम एंड करना होगा. और व्हाई डोंट यू सिंग समथिंग फॉर पीहू एज अ फिनाले टू द प्रोग्राम?
अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कहीं धड़कन कहीं जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी. ये गाना उसको मतलब ये गाना इतना मुझे उससे इतना वो करता है, रिलेट करता है कि बहुत ज़्यादा मतलब एकदम मैं उससे जुड़ी हुई हूँ. आज जो भी मेरी लाइफ में है वो पीहू है, और मेरी पूरी दुनिया ही मेरी पीहू है.
हम यही चाहते हैं कि लक्ष्मी तुम्हारी ये सुंदर सी दुनिया बस ऐसी ही बसी रहे, ऐसी ही खिलती रहे, और जो तुम इंस्पिरेशन हो सारी दुनिया के लिए वो बनी रहो. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर प्रोग्राम टुडे.
थैंक यू.
जाते जाते एक कुछ सुना दीजिए गाना.
हमारी एसिड के ऊपर एक गाना है सर्वाइवर्स के, जो कि अंकिशा और सुमित जी ने गाया था. और बड़ा खूबसूरत गाना उन लोगों ने गाया था, और यही गाना मैं गुनगुनाती हूँ. एक खूबसूरत सा एहसास थी मैं
गाथा में अभी आपने सुनी एक खास बातचीत एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल के साथ, जिसे गाथा में आपके लिए प्रस्तुत किया गया प्रसार भारती के सौजन्य से.